أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعے پہ بعض معاشرتی خرابیوں کا ذکر کروں گا جو گھروں کی جنت کو تباہ کرنے کا موجب بنتی ہیں, اور وہ مقاصد جن کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے ان مقاصد کے بالکل برعکس نتائج پیدا کر دیتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ ان خرابیوں کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں, وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جو ان خرابیوں کا موجب ہوتے ہیں, اور وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جو ان خرابیوں کا نشانہ بنائے جاتے ہیں. اور معاشرتی خرابیاں ایسی نہیں ہوا کرتی کہ صرف یک طرفہ دکھ پہنچائیں, پھر بھی دکھ پہنچانے والے بھی باز نہیں آتے, اور جن کو دکھ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے بسا اوقات وہ بھی اسی قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے نتیجے میں معاشرہ مزید بدزیب اور بدصورت اور مکروہ اور کڑوا ہو جاتا ہے. اس ذکر کے نتیجے میں کچھ دوستوں نے خیال آرائی شروع کی, بعض ذکر مجھ تک بھی پہنچے, اور عموماً جو میں نے اندازہ لگایا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض ساسیں یہ انتظار کر رہی ہیں کہ ہم جو بہوؤں کے خلاف شکایتیں کیا کرتی تھیں تو اگلے خطبے میں بہوؤں کی شامت آئے گی, اور بعض بہوئیں یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ ہم نے جو ساسوں کے خلاف چٹھیوں کی بھرمار کی ہوئی تھی تو اگلے خطبے میں ساسیں پکڑی جائیں گی. بعض بیویاں خاوندوں کی شامت کا تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہی ہیں, بعض خاوند بیویوں کا تماشا دیکھنے کے منتظر بیٹھے ہیں, بعض بچے ہیں جنہوں نے والدین کی بدخوئی کی شکایت کی ہوئی ہے, وہ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اس دفعہ والدین پکڑے جائیں گے, اور بعض والدین ہیں جو رونا روتے ہیں اپنے بچوں کی بے راہ روی کا, ان کی بدخلقی کا, ان کی بے دینی کا. ان کے دل میں یقین ہے کہ آج ایسے بچوں کا ذکر کیا جائے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خطبہ کسی کے بھی خلاف نہیں, نہ ساسوں کے خلاف ہے, نہ بہوؤں کے خلاف ہے, نہ بیویوں کے خلاف ہے, نہ خاندانوں کے خلاف ہے, نہ بچوں کے, نہ والدین کے, بلکہ محض ان برائیوں کے خلاف ہے جو جس طبقے میں بھی رونما ہوں اس طبقے کو مجرم بنا دیتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں نفرتوں کا کس کی کس بھولنے لگتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مومن کو یہ سبق ہی نہیں دیا گیا کہ انسان سے نفرت کرے, برائیوں سے نفرت کی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے جب مثال کے طور پر کہیں ساس کا نام لیا جائے یا خاون کا یا بیوی کا یا بہو کا یا بچوں کا یا ماں باپ کا, تو اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے کہ کسی ایک خاص طبقے کو مطعون کیا جا رہا ہے. یہ تو سب برتن ہیں, ان برتنوں میں جہاں جہاں حسن جھلکے گا یہ برکت یہ برتن خوبصورت دکھائی دینے لگیں گے, جہاں جہاں بدی جلوہ نمائی کرے گی وہاں یہ بدصورت اور بدزیب دکھائی دینے لگیں گے. اس لیے ان کا ذکر محض تمثیلن ہوگا, کسی ایک طبقے کے خلاف کوئی بات نہیں. اصولاً قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہی تعلیم ہے جو اس خطبے کا محرک ہے. حقیقت یہ ہے کہ سب برائیوں کی جڑ سنت نبوی سے گریز ہے, اور جب میں سنت نبوی کہتا ہوں تو مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی عملی صورت سے گریز ہے. بسا اوقات ایک انسان قرآن کریم کے خلاف بغاوت نہیں کرتا اور بظاہر یہ یقین رکھتا ہے کہ میں سارے قرآن پر ایمان لاتا ہوں, کیونکہ وہ لفظوں میں تعلیم ہے, اور لفظوں میں تعلیم خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو جب تک عمل میں نہ ڈھلے اس کی سختی پوری طرح محسوس نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کریم کے خلاف بغاوت نہ کرتے ہوئے بھی سنت کو اختیار کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ قرآن کریم کے لفظ جب عمل میں ڈھلتے ہیں تو اسی کا نام سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے. اس لیے قرآن کو عمل میں ڈھالنا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے, اور سنت کی پیروی بظاہر ثانوی درجہ رکھتی ہے لیکن اس پہلو سے اولیت اختیار کر جاتی ہے کہ قرآن کی لفظی پیروی کے مقابل پر سنت کی عملی پیروی بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. تو معاشرے میں بھی جتنی خرابیاں ہیں ان میں سے ہر ایک کی تان اسی بات پر جا کے ٹوٹے گی کہ سنت نبوی سے گریز کیا گیا ہے, اور بعض قسم کے اعمال میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال میں ہوتے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا, آپ نے کیا نمونہ دکھانا تھا. اور وہ نمونہ اتنا واضح ہے, اتنا کھلا کھلا ہے, اس میں کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں, اور ہر مسلمان کے لیے یہ آسان ہے کہ اس نمونے پر نظر ڈالے, اس کا تصور کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے لگے. جتنے جھگڑے قضاؤں میں جا رہے ہیں, اگرچہ سارے جھگڑے قضاؤں میں نہیں جا رہے مگر جتنے بھی قضاؤں میں جھگڑے جا رہے ہیں ان میں سے ہر جھگڑے کا تجزیہ یہی ہوگا کہ فریقین میں سے دونوں کسی نہ کسی پہلو سے سنت سے گریز کر رہے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئلی خرابیوں کے سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی تعلیم یہ بیان فرمائی اور جس پر عمل کر کے دکھایا کہ اپنے خلق کی حفاظت کرو, حسن خلق اختیار کرو. اگر تمہارا خلق عموماً حسین ہے, نرم ہے, گفتگو کا سلیقہ جانتے ہو اور وہ بنیادی صفات تم میں پائی جاتی ہیں جس سے انسانیت حسین بنتی ہے, تو اس کے نتیجے میں اکثر مواقع خرابیوں کے پیدا ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ جب دونوں طرف معاملہ کرنے والے حسن خلق کی زینت سے آراستہ ہوں, اچھے اخلاق رکھتے ہوں, تو بہت سے ایسے مواقع پیدا ہی نہیں ہوتے جن کے نتیجے میں بعض دفعہ بڑے بڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں. ایک بات ایک انسان سختی کی کہہ دیتا ہے अगर दूसरी तरफ कोई सख्त रू इंसान है तो वो उससे भी ज्यादा सख्त बात मुकाबले पर कहता है, और छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते बाज़ दफ़ा कत्लो खून पर मुंतज हो जाया करती है। यानी ऐसी ऐसी बातों पर कत्ल होते देखे हैं रमजान शरीफ में, दो आने के पकौड़े खरीदने के ऊपर ऐसी गुफ्तगू चल पड़ी कि तेरे पकौड़े खराब होते हैं, उसने कहा तू ऐसा, तेरा मुंह खराब है, तेरी जात खराब है। रफ्ता रफ्ता एक दूसरे को जवाब देते देते यहां तक बात पहुंच गई कि एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, और इस तरह रमजान का रोजा टूटा इस शख्स का। हैरत होती है रमजान के महीने में, खुसूसन जब मैं अखबारात में जराइम के वाकयात पढ़ता हूं तो हैरत होती है कि किस तरह जब इंसान बुनियादी तौर पर बदखुल्क हो तो रमजान का मुबारक महीना भी उसको फितना और फसाद से बचा नहीं सकता। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्क के हसीन करने पर, खुल्क हुस्ने खुल्क पर बहुत ही जोर दिया करते थे। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अहलो आयाल के साथ सुलूक के साथ बांध कर बयान फरमाया। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अकमलिल मोमिनीन ईमानन आसनुहुम खुल्कन व अल्तफुहुम बे अहलिही, कि तुम में से सबसे कामिल ईमान वाला मोमिन वो मोमिन है जो खुल्क में सबसे ज्यादा हसीन हो। वह अल्तफुहुम बे अहलिही, और अपने अहलो आयाल पर बहुत ही ज्यादा लुत्फ करम करने वाला। ये अगर सिर्फ मर्दों में पैदा हो जाए तो मैं समझता हूं कि कम से कम 90% फसाद के मुहर्रकात और घरों की जिंदगी की तबाह होने के मुहर्रकात खत्म हो जाते हैं। मर्द की बदखुई बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, औरत की बदखुई भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, लेकिन बिलअमूम मर्द की बदखुई के नतीजे में औरतें भी बदखू होने लग जाती हैं, और बुनियादी तौर पर मर्द कवाम है, इसलिए मर्द ने औरत को अखलाक सिखाने हैं। जैसा कि मैं आगे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक हवाला पढ़ूंगा, आपने इसी बात पर जोर दिया है कि अगर औरतों में तुम हुस्न खुल्क पैदा करना चाहते हो तो अव्वल जिम्मेदारी मर्दों पर है कि वो हसीन अखलाक का मुजाहरा करें, ताकि उनके उसके नतीजे में औरतें भी वो खुल्क के नमूने पकड़ें, और इसके नतीजे में रफ्ता रफ्ता मुआशरा हसीन होने लग जाए। एक और हदीस में जिक्र मिलता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली व इज़ा माता साहिबुकुम फदऊहु। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल के लिए बेहतरीन है, और मैं तुम में से अपने अहल के लिए बेहतरीन हूं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फरमाया कि बीवियों के साथ ऐसा सलूक करो कि जब तुम खाओ तो उसको भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसको भी पहनाओ, चेहरे पर ना मारो, बुरा ना कहो, घर के सिवा कहीं और उससे कता ताल्लुक ना करो। जहां मारने का जिक्र है इस सिलसिले में मैं आइंदा अलग बात करूंगा। इस मौके पर यह हदीस मैंने इसलिए इख्तियार की है कि इसमें एक आखिरी फिक्रा बहुत ही ज्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है। ये तो आपने बसा औकात सुना है कि जैसा खुद करो वैसा दूसरे से भी करो, हुस्ने सलूक में भी, हर मामले में, यानी सिर्फ बीवियों से नहीं बल्कि दोस्तों से भी, गैरों से भी, इंसान जैसा चाहता है अपने लिए वैसा उसके लिए भी करे। इस्लाम की तालीम तो यहाँ तक सिखाती है कि जो खुद खाओ वो गुलाम को भी खिलाओ, जो खुद पहनो वो गुलाम को भी पहनाओ। इसलिए हुस्ने बीवी से हुस्ने सलूक के मामले में ये बात तो एक रोज़मर्रा की बात है, लेकिन ये फ़िक्रा एक बहुत गैर मामूली फ़िक्रा है जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर तुम उससे क़ता ताल्लुक़ करो तो घर में करो, बाहर ना करो। इसमें औरत की इज्जत और शर्फ़ के क़याम के लिए एक बहुत ही अहम तालीम दी गई है। बाज़ दफ़ा मर्द अपनी बीवियों की बेइज्जती लोगों के सामने करते हैं, रिश्तेदारों के सामने या गैरों के सामने, और वो समझते हैं कि कुरान करीम ने हमें इजाज़त दी है कि इनसे सख्ती करो। कुरान करीम को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कौन समझ सकता था? आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी जानते थे, क्योंकि आप ही पर यह कलाम नाजिल हुआ, कि बासूरतों में कुरान करीम औरतों से अदम ताल्लुकी की भी इजाज़त देता है, जैसे सोशल बाइकआउट होता है। मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के सामने भी तुम उस क़ता ताल्लुकी को ज़ाहिर कर दो। जब घर में कोई आया हो या कोई गैर मौजूद हो या बाहर निकलकर जब लोगों के घर जाते हो, उस वक्त लोगों पर ना ये ज़ाहिर होने दिया करो कि तुम्हारे अंदर कोई नाचाफी है और तुम अपनी बीवियों से नाराज़ हो। और बहुत सी माशरती खराबियाँ इस वजह से पैदा होती हैं कि औरत को मर्द से शिकायत पैदा होती है और मर्द को औरत से कि जो कुछ तुमने हमें कहना था अलहदगी में कह लेते, ये लोगों के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी, और जब तुमने लोगों के सामने कहा तो फिर हम जवाब भी लोगों के सामने देंगे। और छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातों पर मुमताज होने लगती हैं और इसके नतीजे में बसा औकात तलाकें हो जाती हैं, फितना और फसाद पैदा होते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरतों के साथ हुस्ने मुआशरत के बारे में आपकी तालीम है, फहशा के सिवा बाकी तमाम कज फुल्कियाँ और तलखियाँ औरतों की बर्दाश्त करनी चाहिए। यानी ये ख्याल कि हाथ उठाने में की खुली इजाज़त है नाउज़ बिल्ला मर्दों को, छोटी सी बात पे उसको नशूज़ कह दिया, बगावत कह दिया और हाथ उठाने लग गया कि कुरान करीम हमें इजाज़त देता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। फहशा के सिवा बाकी तमाम कज फुल्कियाँ और तलखियाँ औरतों की बर्दाश्त करनी चाहिए। हमें तो कमाल बेशर्मी मालूम होती है कि मर्द होकर औरत से जंग करें। हमको खुदा ने मर्द बनाया है, दर हकीकत हम पर इत्माम नेमत है, इसका शुक्रिया ये है कि हम औरतों से लुत्फ और नरमी का बर्ताव करें। एक दफ़ा एक दोस्त की शिकायत हुई कि वो अपनी बीवी से सख्ती से पेश आता है, तो आपने फरमाया हमारे अहबाब को ऐसा ना होना चाहिए। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औरतों के हकूक़ की जैसी हिफाजत इस्लाम ने की है वैसी किसी दूसरे मज़हब ने नहीं की, ने कतन नहीं की। मुख्तसर अल्फाज में फरमा दिया वाला हुन्ना मिसलुल्लज़ी अलैहिन्ना, कि जैसे मर्दों के औरतों पर हकूक हैं वैसे ही औरतों के मर्दों पर हैं। बाद लोगों का हाल सुना जाता है कि इन बेचारियों को पाँव की जूती की तरह जानते हैं और ज़लील तरीन खिदमात उनसे लेते हैं, गालियां देते हैं, हकारत की नज़र से देखते हैं और पर्दा के हुक्म ऐसे नाजायज तरीक से बरतते हैं कि उनको जिंदा गरगोर कर देते हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में अपनी अज़वाज मुतहरात से जो सलूक था उसकी तफसील बयान करने के लिए तो एक से ज़्यादा खुतबे दरकार हैं और कई तकारीर का मज़मून बन सकता है, क्योंकि बकसरत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी की तस्वीरें अहादीस में मौजूद हैं। क्या करते थे रोज़ाना, किस तरह का सलूक था, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, नाराजगियों के वक्त, सुलह के वक्त, इजहार मोहब्बत के वक्त, इजहार नाराजगी के वक्त, हर किस्म के हालात में सुबह से शाम तक तमाम आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरूनी घरेलू वाक़यात अहादीस नबी में महफूज हैं। और उम्मत की तालीम की खातिर उम्महातुल मोमिनीन ने शब्बाशी के वाक़यात भी उस हद तक बयान फरमाए जिस हद तक मुसलमानों की तालीम के लिए ज़रूरी है। तो बहुत ही वसी मज़मून है। खुलासा ये है कि सारी ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी अज़वाजे मुतहरात में से किसी को नहीं मारा। और अमरे वाक़िया ये है कि अज़वाजे मुतहरात से बारहा ऐसी बातें भी सरज़द हुई जिनके नतीजे में शदीद नाराज़गी का मौरद भी बनी। बाज़ औक़ात ऐसी बातें भी सरज़द हुई कि जिनके नतीजे में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय कोई और मर्द होता तो घर में कई किस्म के फितने फूट पड़ते, कई किस्म की ऐसी बातें चल निकलती हैं जिनके नतीजे में वो आपस में मियां बीवी के तौर पर रहने का कोई सवाल बाकी नहीं रहता था। लेकिन हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ही सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को वालदैन की नाराज़गियों और उनकी मार से बचाया। इन बजाय इसके कि आप मार में जल्दी करें, मैंने जैसा कि बयान किया है, सारी ज़िंदगी में एक मरतबा भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, अज़वाज मुतहरात में से किसी को अदना सी ज़र्ब भी नहीं लगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वालदैन से भी बचाया। चुनांचे एक मौके पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुछ खफगी आपस में हुई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बुलंद आवाज़ से आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर बोलने लगी। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी शदीद मोहब्बत थी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपकी मौजूदगी में हज़रत आयशा पर हाथ उठाने लगे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ कर हाथ रोका और फरमाया कि नहीं अबू बकर, ये नहीं होगा। हज़रत आयशा की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक घर से बाहर चले गए और फिर काफ़ी दिन तक उस घर में दोबारा नहीं आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फिर भी नाराज़ रहे। ज़ाहिर बात है कि अपनी बेटी से नाराज़गी का मूजिब ज़रूर कुछ ऐसी बात हुई होगी जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया गुस्ताखी हो रही है। बहरहाल लंबा अरसा इनकता किया और एक दफ़ा घर में दोबारा दाखिल हुए तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही मोहब्बत के हालत में गुफ्तगू फरमा रहे थे एक दूसरे से। बहुत प्यारा प्यार का माहौल था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वो वाक़या याद था, इसलिए जिस तरह निकले थे उससे आसन रंग में दाखिल हुए और फरमाया कि अच्छा, जिस तरह मुझे अपनी नाराज़गी में तुम लोगों ने शरीक कर लिया था, अब मुझे अपनी सुलह में भी तो शरीक कर लो। तुम्हारी नाराज़गी के वक्त मैं दाखिल हुआ था और नाराज़ होकर चला गया था, अब सुलह के माहौल में तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए मुझे सुलह के माहौल में भी शामिल कर लो अपने साथ। कैसे सादा सादा प्यारे प्यारे वाक़यात हैं लेकिन बड़ी गहराई है इनमें। देखने में बज़ाहिर सादा हैं लेकिन अगर आप इनके अंदर गोता लगाएं, गौर करें, तो आपको मालूम होगा कि बहुत ही आला दर्जे के खुल्क इनके पस मंज़र में हैं। उन आला दर्जा के अखलाक के बग़ैर ऐसी तस्वीरें बन नहीं सकती। रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें बीमार भी हो जाती हैं, बाज़ वक़्त कहती हैं मेरी सर दर्द हो रही है, मर्द आगे से जवाब देता है कि अच्छा जाओ जहन्नम में, यह और सख्ती कर देता है, या गैर मामूली नरमी इख्तियार कर देता है और बीमारी को गैर मामूली अहमियत दे देता है, ऐसा भी होता है, और दोनों सूरतों में मुआशरा खराब होता है। खावंद अगर औरत की बीमारी पर तवज्जो न दे और मुनासिब हुस्न सलूक न करे तब भी, और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाए तब भी, मुआशरा ज़रूर तबाह हो जाता है। बाज़ घरों में आपने देखा होगा पुराने ज़माने में तो ऐसे घर बहुत मिला करते थे कि बाज़ औरतों को बीमार रहने की आदत पड़ जाती थी, सिर्फ इसलिए कि वो समझती थी कि खावंद ज़्यादा दिल को लगाता है और ज़्यादा अहमियत देता है, उनका शेवा ही बीमारी बन जाता था। और बाज़ घरों में खावंद की मौजूदगी में तो लाजमन औरत बीमार बनी रहती थी, जब खावंद चला जाता था तो फिर उठ के दौड़ने फिरने लग जाया करती थी, सारी ज़िंदगी उस खावंद बेचारे की तलख गुजर जाती थी बीवी की बीमारियों के नखरे उठाते हुए। उसके बरक्स बाज़ औरतों के की बीमारी की खावंद को परवाह नहीं होती थी, यहाँ तक कि वो मौत के किनारे तक पहुँच जाया करती थी, बीमारी की हालत में उनसे शिद्दत से काम लेने, बीमारी की हालत में उन पर बोझ डालने, बीमारी की हालत में मेहमान बुलाने और बाहर के मुआशरे में अपना चेहरा खूबसूरत दिखाना और घर के अंदर ऐसी बदसूरती कि बीमार औरत पर बोझ डाला जा रहा है। ये हमारे वाक्य है, बाज़ औरतें मेरे इल्म में हैं कि जिनको हमल का ज़माना अभी पूरा नहीं गुजरा, पैदाइश के बाद 40 दिन अभी पूरे नहीं गुजरे वजह हमल के बाद, और जिस्म कच्ची हालत में है, उस हालत में उनसे बारिशों में बाहर चरपाइयाँ उठवाई जानी, मेहमान आए तो उनकी खिदमत करवाना, अपनी बहनों और अपने दूसरे अजीज़ों के कपड़े धुलवाना, इस तरह चक्की में पीसी जाने वाली बाज़ औरतें हैं कि हैरत होती है कि किस तरह किसी इंसान को ये हौसला पड़ता है कि इस किस्म के मज़ालिम करे। तो बीमारियों को नज़रअंदाज कर देना या बीमारियों को गैर मामूली अहमियत देना, ये दोनों बातें खराबी का नतीजा, खराबी का मुझे बनती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने खुल्क की अगर एक लफ्ज़ में तारीफ़ की जाए तो वो तवाज़ुन है। इतना हसीन तवाज़ुन था आपकी ज़ात में कि हर चीज़ एतदाल पर थी, गैर मामूली मोहब्बत भी नहीं थी और मोहब्बत जितनी होनी चाहिए उससे एक ज़र्रा भी कम नहीं थी। बुनियादी असूली बातों में आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की ख़त्म परवाह नहीं करते थे, और जहाँ अपनी ज़ात की तकलीफ़ हो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ही एक वाक़िया है, एक मौके पर आपने आपकी एक और बेगम, एक और ज़ौजा मोहतरमा जिनका कद छोटा था, उनके मुतल्लिक तान के तौर पर अपनी छिंगली दिखाई कि वो आपकी बेगम जिनका कद इतना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया है, जहाँ असूल थे, जहाँ सच्चाइयाँ सामने आती थी, वहाँ मोहब्बतें यूं कुर्बान कर दिया करते थे जैसे मोहब्बत की अहमियत ही कोई नहीं। उस मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने एक ऐसा कलमा कहा है कि अगर इसको दरिया में मिला दिया जाए तो वो दरिया पर भी गालिब आ जाए, यानी इसकी करवाहट दरिया को भी करवा कर दे। एक इसका तर्जमा दूसरी रवायत में समंदर का भी बनता है कि अगर समंदर में यह कलमा डाला जाए तो समंदर का मिजाज बदल दे, उसका रंग बदल दे, उसका जायका बदल दे, यानी उसको भी कड़वा कर दे जो पहले कड़वा होता है। एक और मौके पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ऐसी बीवी का भेजा हुआ सालन गिरा दिया जो जिनकी बारी नहीं थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारी थी, किसी और ज़ौजा ने जिनका खाना हाथ का पका हुआ खाना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाया करते थे, उन्होंने मोहब्बत में वो खाना भेज दिया हजरत आयशा की बारी के दिन, और हजरत आयशा ने हाथ मार के वो बर्तन गिरा दिया और बर्तन टूट गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब सलूक है। हजरत आयशा के इस फेल के ऊपर जो आपका रद्द अमल जाहिर होता है उसको उससे अंदाजा होता है कि कैसी मुतवाज़न तबीयत थी। इस सूरत में नाराज नहीं होना चाहते थे कि जिसके नतीजे में घर भड़क उठे और शिकवे पैदा हो जाए दोनों तरफ से। इस सूरत में दबाना भी नहीं चाहते थे अपने जज्बात को कि हजरत आयशा समझें कि ये बात बड़ी अच्छी हो गई, ठीक है, गैर दूसरी अपनी शौकनों के मुतालिक में जो कुछ सलूक करूंगी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बर्दाश्त कर लिया करेंगे। और ये भी जानते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझसे बहुत मोहब्बत करती है आयशा। अगर इस बात को मैं अपनी ज़ात पर ले लूँ, खुद तकलीफ उठाऊँ, तो इसका बहुत ज़्यादा गहरा इस पर असर पड़ेगा और इस्लाह के लिए ये सबसे ज़्यादा मौसर साबित होगी। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीका को ये नहीं कहा कि तुम अभी ये बर्तन इकट्ठे करो, तुम नया बर्तन घर से ला के दो, तुम ये काम करो और तुम वो काम करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद झुके जमीन पे, खाना अपने हाथों से इकट्ठा किया, उस बर्तन के टुकड़े इकट्ठे किए, उनको जोड़ा और जोड़ के उसमें खाना डाला और फरमाया कि आयशा ये खाना खाओ, और खुद भी वो खाना खाया। हजरत आयशा ने फिर एक नया बर्तन घर से निकाल के दिया कि या रसूलल्लाह ये बर्तन उनको भिजवा दो, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो टूटा हुआ बर्तन खुद जोड़ कर हजरत आयशा के सुपुर्द कर दिया कि ये लो तुम अपने घर रखो और नया बर्तन लेके उन बेगम को भिजवा दिया। अब ये छोटे से वाकया के ऊपर अगर आप गौर करें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से फसाद हो सकते हैं, हुआ करते हैं। गुस्से में आकर उस औरत के खिलाफ एक खावन बातें शुरू कर देता है, मुंह पे चपेड़ मार देता है, बाज़ दफ़ा गालियां देने लग जाता है कि तुम बदखुल्क, तुम्हारे माँ बाप भी बदखुल्क, और ये और वो, और सारे घर वालों के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। बहरहाल कोई भी गलत रद्द अमल ज़ाहिर हो वो आगे बहुत बड़े फसाद पर मुंतज हो सकता है, लेकिन तहम्मुल, बुर्दबारी, हौसले के साथ, अक्ल कामिल के साथ अगर इंसान एक मामला करता है तो उससे आला खुल्क पैदा होता है। आला खुल्क महज कोई जज्बाती नरमी का नाम नहीं है। महज जज्बाती नरमी बाज़ लोगों को बीमारी के तौर पर मिला करती है। बाज़ बूढ़े हैं बेचारे, वो हर बात पे रो पड़ते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बाद लोग हैं जो हंसते ही रहते हैं हर वक्त, लोग कहते हैं ये बड़ा हसीन खुल्क वाला आदमी है, बड़ा खलीक है, बहुत हंसता है, लेकिन जहाँ भी ज़रा सी आजमाइश होगी ये ऐसा हंसने वाला आदमी बाज़ दफ़ा ऐसा बुरा नमूना दिखाता है कि आदमी हैरान रह जाता है। तो ये बीमारियाँ हैं। खुल्क का ताल्लुक हिकमत कामला से है। ये हो ही नहीं सकता कि कामिल हिकमत की बात ना हो और वो अच्छा खुल्क। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुरान करीम फरमाता है युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, उसमें हिकमत का ताल्लुक खुल्क से है। इतना हर आपके फेल के पीछे हिकमत का समंदर मौजन हुआ करता था कि कोई एक भी फेल हजूर अकरम की जिंदगी का ऐसा नहीं जिसका तजिया करें आप तो इस नतीजे पर ना पहुंचे, एक कामिल अकल वाले ने सोच कर यह नमूना बनाया। लेकिन मालूम ऐसा ही होता है कि सोचकर बनाया है, लेकिन जब जहन सही रास्तों पर चल पड़े, जब जहन मुत्तकी हो जाए, जब सही फैसले के खिलाफ कोई और सोच किसी और तरफ चल ही ना सकती हो, तो फिर ये खुल्क बनकर जिस्म अपने अज़ा में इस तरह दाखिल हो जाती है बात कि हर बात सोच करनी फिर की जाती, खुद ब खुद जाहिर होने लगती है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हिकमत कामिला का एक मौजज़ा थी, और ऐसी हिकमत कामिला आपको अता हुई थी जो सिर्फ दिमाग में नहीं रहती थी, आपके अज़ाम में सरायत कर गई थी, आपके हर जिंदगी के रद्द अमल में दाखिल हो चुकी थी, और इसीलिए आपसे हसीन तरीन अखलाक रूनुमा हुए। एक मौके पर हजरत हफ्सा जो यहूदी सरदार की बेटी थी और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकद में आई थी, उनको एक दूसरी बीवी ने ये ताना दिया कि यहूदी की बेटी है, और इस ताने पर वो बहुत रो रही थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात की तो क्या रद्द अमल जाहिर होता है? देखिए, आपने फरमाया, हफ्सा, ये कोई रोने की बात है? तुम्हारा तो खावन भी नबी है और तुम्हारा चचा भी नबी और तुम्हारा बाप भी नबी। मतलब ये कि यहूदी नस्ल में, यहूदी आबाओ अजदाद में तो तुम जिन बापों की औलाद हो वो नबी थे, और ऐसे नबी भी थे जिनके भाई भी नबी थे। तो तुम्हारा बाप भी नबी, तुम्हारा चचा भी नबी, तुम्हारा खावन भी नबी, जिसने तुम्हें ताना दिया है वो भी ये कह सकती है अपने मुतल्लिक। तो किस तरह बाप बात को किस हसीन रंग में उलटाया है, और हजरत हफ्सा को खुश भी कर दिया और एक गायब बीवी के खिलाफ उससे बातें भी नहीं की। और हिकमत कामला किसको कहते हैं? बस याद रखें, हुस्न कामिल यानी अखलाक था हुस्न कामिल, हिकमत कामला के नतीजे में रूनुमा होता है, और जितना कोई गबी और बेवकूफ होगा उतना ही ज्यादा बदखुल्क होगा। सोच के नतीजे में भी हसीन अखलाक पैदा हो सकते हैं, और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जज्ब होने के नतीजे में भी खुद ब खुद वो अखलाक पैदा होते हैं। सोच के नतीजे में इंसान गलतियां कर सकता है, क्योंकि हर शख्स की सोच कामिल नहीं हुआ करती। इसलिए सोच के नतीजे में, तदब्बुर के नतीजे में जो अखलाक पैदा होंगे उनकी जमानत कोई नहीं, लेकिन सुन्नत की पैरवी के नतीजे में जो अखलाक पैदा होते हैं उनकी कामिल जमानत है। कुरान करीम फरमाता है कि तुम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवे हसना है, बस जिसके आमाल को खुदा हसीन करार दे दे, अल्लाह की मोहब्बत की और रजा की आंख जिसके आमाल पर पड़ती हो, उसमें किसी गलती किसी ठोकर का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आपके लिए ये जरूरत नहीं कि मजीद सोचें मजीद तदब्बुर अख्तियार करें, गौर व फिक्र करें कि हम किस तरह अपने अखलाक को हसीन बनाएं। आपका तो सिर्फ इतना काम रह गया कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वाकिफ हों और उससे मोहब्बत करें, और उस मोहब्बत के नतीजे में आपके अपने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने लग जाएं। अगर हसीन से मोहब्बत हो जाए तो लाजमन उसका हुस्न मोहब्बत करने वाले में भी सरायत करने लगता है। अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आपको मोहब्बत हो जाए तो इसका लाजिम यह नतीजा निकलेगा कि जिन बातों में आपको सुन्नत का इल्म नहीं भी होगा उन बातों में भी आपसे सुन्नत वाले आमाल रूनुमा होने लग जाएंगे। यह एक फितरती नतीजा है कुल से मोहब्बत करने का कि जुज दुरुस्त होने लगते हैं, खा बाद अज्जा का इल्म ना भी हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद बीमार होते थे तो अपनी बेगमात पर ज्यादा बोझ नहीं डालते थे, जब वो बीमार होती थी तो उनके साथ हुस्ने सलूक फरमाया करते थे, रोजाना घर में कामों में हिस्सा लिया करते थे, अपने कपड़े खुद सिया करते थे, अपनी जूतियों को भी बाज़ दफा खुद पैबंद लगाया करते थे, रोजमर्रा के कामों में अपनी बीवियों की मदद किया करते थे। आजकल अगर किसी मर्द से कहा जाए कि तुम भी घर के कामों में दिलचस्पी लो, तुम भी अपनी औरत के साथ मदद करो, उस पर बेवजह बोझ ना डालो, अगर वो खुद शौक से खिदमत करती है तो लो करवाओ खिदमत, लेकिन वक्त बे वक्त बीमार देखकर और मुसीबत में देखकर भी उसको खिदमत पर मजबूर करना, ये सुन्नत नबी के खिलाफ है। तो ऐसा मर्द बाज़ दफ़ा ये कहता है कि जी वो और वक्त है, हम तो बड़े मसरूफ़ हैं, इस मसरूफ जिंदगी में भला हो सकता है कि बाहर भी काम करें और अंदर आकर भी औरत की मदद करें। वो ये बात भूल जाता है कि सारी दुनिया में जब से इंसान बना है और जब तक रहेगा, हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मसरूफ़ कोई इंसान नहीं था, ना है, ना होगा। इतने हैरत अंगेज का इतना हैरत अंगेज है आपका मसरूफुल औकात होना, खुद ये अपनी जात में एक मुजज़ा मालूम होता है। कुरान करीम गवाही देता है कि सारा दिन तुझ पर इतने काम है, इतने बोझ है कि हम जानते हैं कि तू हर वक्त हमारी याद में मुब्तला होने के बावजूद भी इन कामों की वजह से अलग नहीं हो सकता। इसलिए है मेरे बंदे, रात को उठकर मुझसे मिलाकर, रात को उठकर इबादत किया कर। इससे ज्यादा कती गवाही किसी के मसरूफुल औकात होने की नहीं हो सकती। और आप रोजमर्रा के घर के कामों में औरतों का हाथ बटाते थे, क्या उससे बेहतर काम करने का वक्त आप काम करना करने के का मौका आपके पास नहीं था? यकीनन था, बेइंतहा काम थे आपको, सारी दुनिया की इसलाह का बीड़ा उठाना और फिर क़यामत तक के लिए, और फिर ऐसे दुश्मनों में घिरा होना, अदना से अदने खादम की परवाह और उसके दुख दूर करने की फिक्र, और दुआएं सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो जिंदा हैं, नस्लन बादा नस्लन आने वालों के लिए भी दुआएं, और फौत शुदगान के लिए भी दुआएं, और दुआएं वो जिनका आगाज इंसानियत से भी ताल्लुक है और अंजाम इंसानियत से भी ताल्लुक है। बेशुमार मसाइल जिनका सामना करना पड़ता था, बेशुमार तालीमात थी, हर जिंदगी के की दिलचस्पी के मौजू पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम देनी थी और फिर उस तालीम की हिकमत समझानी थी। कितने बड़े काम थे। एक ऐसा मसरूफ़ुल औक़ात घर में बैठा अपनी जूती को भी पैमान लगा रहा है, अपने फटे हुए कपड़े भी सी रहा है, खाने पकाने में चीज़ें पकड़ा रहा है, अपनी बीवी को उसकी मदद कर रहा है, टूटे हुए बर्तन जोड़ रहा है कि दिलशिकनी ना हो जाए किसी दूसरी बीवी की। हैरत की बात है, ये नमूने को नहीं पकड़ते लोग अपने घरों में। इस किस्म के मर्द अगर आज के माशरे में पैदा हों तो बहुत सी खराबियां जो बाद में दूसरों की तरफ से रूनुमा होने लगती, बीवियों की तरफ से या बच्चों की तरफ से या दूसरे मिलने जुलने वाले और घर वालों की तरफ से, उनका आगाज ही ना हो, बने ही ना बीमारियां शुरू हों। मर्द को खुदा ने कवाम बनाया है, अगर मर्द अच्छा नमूना घर में दिखाए और उस नमूने को जारी करे तो लाजमन उसके नतीजे में बहुत ही ज्यादा हसीन मुआशरा वजूद में आ सकता है। हजरत आयशा सदीका की एक रिवायत बीमारी के मुतल्लिक भी मिलती है। आप एक दफा बीमार हुई, शदीद सर में सर दर्द थी, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने शिकायत की कि या रसूलल्लाह मेरे सर में तो सख्त सर दर्द है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। तसल्ली से प्यार से इस बात का इजहार किया। वो ज़माना ऐसा तो नहीं था कि बनी बनाई दवाइयां घर में मौजूद होंगी, फ़ौरन एक टिकिया खिलाई और सर दर्द दूर हो गई, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फिक्र ही दरअसल शिफा था। अमर वाक़िया ये है जिसके अगले हिस्से से भी पता चल रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हर बात दुआ बन जाया करती थी। तो आपने तो प्यार और दुआ के रंग में फरमाया इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। हज़रत आयशा की मालूम होता है सिरदर्द उस वक्त हट घट गई होगी, क्योंकि अगली बात से लगता है कि सिरदर्द वाला तो वैसी बात नहीं किया करता था। फौरन बोली कि आपको क्या है, मैं मर जाऊंगी तो आप कोई और शादी कर लेंगे। इनकी फिक्र यह पड़ गई कि मेरे बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और घर में न ले आए। आपने फरमाया आयशा नहीं, मैं फौत हो जाऊंगा और तुम जिंदा रहोगी। आयशा सदीका सारी उम्र पछताती रही इस बात के ऊपर, हमेशा फरमाया करती थी कि मुझे शदीद दुख है कि मैंने उस वक्त ये क्या बात कह दी थी। अब जानते हैं क्यों? इसलिए कि आप जान गई थी कि जो कलमा उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकल रहा था वो दुआ बन रहा था। आपको जब बात की लंबी तरहाई की जिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी, लंबी जुदाई हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखनी पड़ी,
उस वक्त आपको पता लगा कि आपके बगैर जीना क्या हो, क्या जीना हुआ करता। उस वक्त आप पछताते थे, काश मेरे लेना कहा होता और मैं ही आपकी जिंदगी में पहुंच गया। ये था मुआशरा जो उस वक्त वजूद में आ रहा था। एक छोटी उम्र की लड़की है, एक बहुत बड़ी उम्र के मर्द से शादी होती है, लेकिन इतना हसीन सलूक था, इस कदर तराम था, इस कदर लुत्फ था, ऐसी शफकत थी आपकी तबीयत में कि वो छोटी सी उम्र की लड़की इस कदर मोहब्बत में मुबतला हो जाती है कि शायद ही दुनिया में ऐसी मिसाल हो कि किसी बीवी को अपने खावन से ऐसी मोहब्बत हुई। तानो तश्नी का जिक्र चला था, बहुत से हमारे घर तबाह हुए हैं बेवजह तानो तश्नी की वजह से। जैसा कि मैंने अभी दाग मिसालें पेश की थी, तानो तश्नी को आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे, और आप तो तानो तश्नी में आपके लिए तो सवाल ही नहीं था कि किसी किस्म की ताने दें किसी को। ये तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या आपके सहाबा के ज़ात से भी बहुत ही गिरी हुई बात थी। कुरान करीम से पता चलता है कि दुश्मन ताने दिया करते थे, काफिर मुसलमानों को ताना दिया करते थे। कहीं कुरान करीम में ये जिक्र नहीं मिलता कि मुसलमान काफिरों को ताने देते थे। इसलिए तानो तश्नी से इज्तनाब बहुत ही ज़रूरी है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना नापसंद फरमाते थे कि एक मौके पर फरमाया कि ताना जनी करने वाला, दूसरे पर लानत करने वाला, फहश कलामी करने वाला, यावा गो और जुबान दराज, ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता और जो मर्जी हो। तो ये तवक्कुआत थी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अपने ईमान लाने वालों पर। और आजकल हर घर इन बातों की आमादगा बना होता है। अच्छे घरों में कम ताना जनी है, बुरे घरों में बहुत ज्यादा है, गैरों में बहुत ही शिद्दत से पाई जाती है, लेकिन अहमदी घरों में भी मौजूद है। कौन कह सकता है कि आज अहमदी घर ताना जनी से पाक है। छोटी छोटी बातों के नतीजे में ताना जनी की जाती है जिससे सारा मुआशरा तलफ हो जाता है। जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात बज़ाहिर छोटी है लेकिन अगर समंदर में भी डाली जाती तो उसके उस पर गालिब आ जाती, ये बात महज एक बलागत का इजहार नहीं है, अमरे वाक्या ये है कि मुआशरे के भी समंदर हुआ करते हैं, और मुआशरों के समंदर का रंग बदलने में सबसे बड़ा काम ताना करता है। माशरे के समंदर का मिजाज कड़वा करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार ताना हुआ करता है। बाज किस्म के जो ताने आम हमारे घरों में रिवाज पकड़ जाते हैं, वो उनमें से बाजों कोई कद छोटे का ताना, कोई बीमारी का ताना, कोई जात पात का ताना, ये ताना कि अपने घर से तुम लेके क्या आई थी, या ये ताना कि अपने घर में तो मैं नाम और नाज में पला करती थी, मैं किस उजाड़ घर में आ गई, यहाँ तो ये भी नहीं मिलता और वो भी नहीं मिलता। ये वो ताने हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दाखिल हुए हुए हैं। इल्ला माशाल्लाह अक्सर घरों में किसी ना किसी शक्ल में ये ताने पाए जाते हैं। जहेज़ का ताना या बरी का ताना या खुदा तआला की तरफ से बाज इब्तला हैं, उनके ऊपर भी ताना देने से बाज ना आना। मसलन औलाद का ताना दिया जाता है औरतों को कि उसकी तो औलाद पैदा नहीं होती और जिंदगी तलख कर दी जाती है। यहाँ तक कि बाज दफा तो बेचारी औरतों की जिंदगी बेटा ना होने के ऊपर तानों के जरिए तलख कर दी जाती है, छलनी कर दिया जाता है। बाज़ मर्द ऐसे होते हैं, हैरत होती है उनके ऊपर, उनको किस तरह पता चला कि कसूर बीवी का है। हो सकता है मर्द का कसूर हो कि बेटी पैदा होती है और मर्द बेटा पैदा नहीं होता, लेकिन मुझे इल्म है, मुझे क्योंकि सारी दुनिया की जमात मुझसे तो कुछ भी नहीं छुपाती, सारे हालात जो घरों में गुजरते हैं वो मुझे लिखते रहते हैं बेतकदर। जिस तरह अपने माँ बाप को इंसान बात लिखता है, उस तरह सारी दुनिया में जो कुछ गुजर रही है उसकी तस्वीर मेरे सामने रोज बनती चली जाती है। تو بعض عورتیں مردوں کے متعلق لکھتی ہیں کہ وہ ہمیں ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے, تین بیٹیاں ہو گئیں, چار ہو گئیں, اور وہ ہماری جان کھا رہا ہے, کہتا ہے کہ میں اور شادی کروں گا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, تمہارے بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا. ایک صورت میں تو ایک عورت نے یہاں تک لکھا کہ مجھے شدید مارا بیٹی پیدا ہونے کے بعد کہ تم منحوس عورت, تم ایک اور بیٹی لے آئیے. اگر یہ درست ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ درست ہے یا غلط, لیکن اگر یہ واقعہ کہیں ہوا ہے تو بہت ہی قابل مذمت, بہت ہی قابل شرم ہے. انسان انسان کو تانا تو دے, مگر یہ تو خدا کو تانا دینے والی بات ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو اپنے اختیار میں نہیں ہیں. لیکن بعض اور بچیاں ایسی ہیں جن کے اولاد نہیں ہو رہی, اور اس کے نتیجے میں مسلسل ان کی زندگی عذاب میں مبتلا کی گئی ہے. وہ اپنے خطوں میں صرف یہ نہیں لکھتی کہ ہمیں بچے کی خواہش ہے, کہتی ہیں ہماری ساس, ہمارے سسر, ہمارے گھر کے ماحول, ہمارے رشتے دار کس طرح ہم سے سلوک کرتے ہیں, جس طرح ہم اچھوت ہیں, جس طرح ایک ناجائز زندگی بسر کر رہے ہیں اس گھر میں, ہمارا حق ہی کوئی نہیں وہاں کیونکہ ہمارے بچہ نہیں پیدا ہوتا, اور خاون نرم ہونے کے باوجود مجبور ہوتا چلا جا رہا ہے, دن بدن اس پہ بھی آثار ٹوٹ رہے ہیں. وہ یوں لگتا ہے جس طرح دونوں ایک جرم کر رہے ہیں, ان کی زندگی جرم بن گئی ہے. حالانکہ اولاد فی ذاتے ہی اس کی خواہش خواہ کتنی بھی ہو, وہ ایسی چیز نہیں کہ اولاد برائے اولاد طلب کی جائے. حضرت مسیح مولا علیہ السلام نے اس موضوع پر متعدد مرتبہ جماعت کو نصیحتیں فرمائی ہیں. دو تین نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اولاد کو فی الحقیقت انسانی زندگی میں کیا اہمیت حاصل ہے. حضرت مسیح مولا علیہ السلام فرماتے ہیں, اکثر لوگ مجھے گھبرا کر خط لکھتے رہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میری اولاد ہو, اولاد کا فتنہ ایسا سخت ہے کہ بعض نادان اولاد کے مر جانے کے سبب زہریہ ہو جاتے ہیں. بعض جگہ اولاد انسان کو ایسی عزیز ہوتی ہے کہ اس کے واسطے خدا تعالیٰ کا شریک بن جاتی ہے. بعض لوگ اولاد کے سبب سے دہریہ, ملحد اور بے ایمان بن جاتے ہیں. بعضوں کے بیٹے عیسائی بن جاتے ہیں تو وہ بھی اولاد کی خاطر عیسائی ہو جاتے ہیں. بعض بچے چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کے واسطے سلب ایمان کا موجب ہو جاتے ہیں. اولاد تو بہت بڑا ابتلاء ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, دین کی جڑ اس میں ہے کہ ہر امر میں خدا تعالیٰ کو مقدم رکھو. دراصل ہم تو خدا کے ہیں اور خدا ہمارا ہے, اور کسی سے ہم کو کیا غرض ہے. ایک نہیں, کروڑ اولاد مر جائے پر خدا راضی رہے تو کوئی غم کی بات نہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. ایک طرف وہ حال ہے کہ اولاد کی محبت میں لوگ زہریہ ہو رہے ہیں, یا خدا نے بیٹا دیا اور واپس لے لیا تو ساری زندگی اس شک میں مبتلا رہے کہ خدا تھا بھی کہ نہیں تھا, یا اگر تھا تو ظالم خدا تو نہیں تھا جس نے ایک بیٹا دیا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا حال ہو. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے مقابل پر یہ تعلق رکھتے ہیں اپنے رب سے, فرماتے ہیں, ایک نہیں کروڑ اولاد مر جائے پر خدا راضی رہے تو کوئی غم کی بات نہیں. اگر اولاد زندہ بھی رہے تو بغیر خدا کے فضل کے وہ بھی موجب ابتلاء ہو جاتی ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, بس وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے اول خود اپنی اصلاح کرو. اگر تم اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے اور خدا تعالیٰ کو راضی کر لو گے تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا. قرآن شریف میں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ درج ہے کہ ان دونوں نے مل کر ایک دیوار کو بنا دیا جو یتیم بچوں کی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا والد صالح تھا. یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ آپ کیسے تھے. بس اس مقصد کو حاصل کرو, اولاد کے لیے ہمیشہ اس کی نیکی کی خواہش کرو. اگر وہ دین اور دیانت سے باہر چلے جائیں پھر کیا, اس قسم کے امور اکثر لوگوں کو پیش آ جاتے ہیں، بددیانتی خواہ تجارت کے ذریعے ہو یا رشوت کے ذریعے یا زراعت کے ذریعے، جس میں حقوق شرفاء کو تلف کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی میری سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کے لیے خواہش ہوتی ہے. یہ نقطے کی بات ہے کہ بہت ساری بددیانتیاں انسان اپنی زندگی میں اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد کی غلط محبت ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیسی محبت کر رہا ہوں. یہ جو نقطہ ہے بہت ہی باریک ذہنی اس نقطے کو اخذ کر سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہنی افتاد کا، آپ کی طرز فکر کے لطافت کا پتہ چلتا ہے اس سے. آپ فرماتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں جو رشوتیں لی جا رہی ہیں، ہر قسم کی حرام خوری ہو رہی ہے، لوگوں کے مال ضبط کیے جا رہے ہیں، اس کی کنوں میں ایک اولاد کی محبت کا دخل ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کے لیے اتنی چیزیں چھوڑ جائیں پیچھے، اتنا کچھ اکٹھا کر لیں. تو جس اولاد کی تمنا خود گناہ میں مبتلا کر رہی ہے، اس اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی فرق پڑ سکتا ہے کہ اولاد نہ ہوتی تو اس کے لیے بہتر. یہ ہے وہ باریک نتیجہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نکال رہے ہیں. فرماتے ہیں بعض اوقات صاحب جائیداد لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جاوے جو اس جائیداد کی وارث ہو تاکہ غیروں کے ہاتھ میں نہ چلی جاوے، مگر وہ نہیں جانتے کہ جب مر گئے تو شرکا کون اور اولاد کون، سب ہی تیرے لیے تو غیر ہیں. اولاد کے لیے اگر خواہش ہو تو اس غرض سے ہو کہ وہ خادم دین ہوے. بس اگر اولاد کے لیے خواہش اس غرض سے ہو کہ وہ خادم دین ہوے، تو اولاد نہ ہونے کے نتیجے میں انسان خود بھی خادم دین نہ رہے بلکہ کہیں کا نہ رہے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ اولاد کی تمنا کا تو مقصد ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نیک اولاد ہو، اور اگر نیک اولاد نہیں تو نہ ہو، یہ نتیجہ نکل رہا ہے. اور یہ پہلو اکثر اولاد کی تمنا کرنے والوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اولاد کے ابتلاء میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو بھی کھو دیتے ہیں. بس یہ تانا کہ اولاد نہیں ہے، اس ضمن میں یہ چونکہ بڑی اہم بات تھی کہنے والی، میں نے تھوڑا سا گریز کیا اصل مضمون سے. کیا میں یہ رہا تھا کہ اولاد کا تانا بھی ہمارے معاشرے میں ایک روزمرہ کا تانا ہے. لڑکا نہ ہونا یا بچہ ہی نہ کوئی ہونا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے ایسے تانوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور بے وجہ ایسے لوگوں کی زندگیاں کیوں برباد کرتے ہیں جن کے بس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیونکہ اب دیر ہو رہی ہے، جتنا میرا خیال تھا کہ گھنٹے سے کم خطبہ ہونا چاہیے، اس سے تھوڑا سا تجاوز ہی کر گیا. اس لیے انشاءاللہ باقی مضمون آئندہ خطبے میں بیان کروں گا. بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں میرے لیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، روزمرہ میرے علم میں یہ باتیں آتی ہیں، اور جب میں ذکر کرتا ہوں خطبات میں بعض ایسی باتوں کا، تو بعض لوگ یہ غلط رد عمل دکھاتے ہیں کہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ حضرت صاحب کو خط ہی نہیں لکھا کرو. ایسے یہاں لندن میں بھی کچھ دن ہوئے تقریر ہوئی تھی، عورتوں میں ایک خاتون نے اپنی طرف سے مجھ سے محبت کا اظہار کیا کہ بڑی بیوقوف ہو تم عورتوں، تم اٹھتے ہو چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ دیتی، وہاں تکلیف پہنچاتی ہے. یہ تکلیف میرا حق ہے اور آپ کا فرض ہے کہ مجھے یہ تکلیف پہنچائیں، کیونکہ میں جواب دہ ہوں. جماعت کی حالت سے بے خبر رہ کر جو سکون ہے وہ مجھے نہیں چاہیے. مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت پہ کیا گزر رہی ہے اور کس حالت میں گزر رہی ہے اور کس طرف اس کا رخ ہے. اس لیے ہرگز اس بات سے نہ رکیں، چاہے کوئی آپ کو کیسی نصیحت کرے، کہ ان باتوں کو مجھ سے چھپانے لگ جائے. مجھے پتہ نہیں چلے گا تو میں کیسے اصلاح کی کوشش کروں گا، مجھے پتہ نہیں چلے گا تو میں ان فرائض کو کیسے ادا کرنے کی کوشش کروں گا جو خدا تعالیٰ نے میرے ذمہ ڈالے. اس لیے بے تکلف ہو کر یہ تکلیف پہنچائیں. بے تکلف ہو کے کیا، آپ کے لیے لازم ہے، فرض ہے آپ کے اوپر. جو بھی ایسی باتیں معاشرے میں ملتی ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، جو ہمارے معاشرے کو تکلیف دکھ سے پہنچا رہی ہیں، وہ ساری باتیں، وہ سارے دکھ میرے دل میں منتقل کیا کریں. जितना ज्यादा ये दुख पहुंचेगा उतना ही ज्यादा मुझे दुआ की तरफ भी तवज्जो पैदा होगी, उतना ही ज्यादा मुझे इस्लाह की तरफ भी तवज्जो पैदा होगी। इसलिए वो मिसरा मेरे जहन में, वो बात जब उनकी सुनी तो वो मिसरा मेरे जहन में आ गया कि तू खूने तू मशके नाज कर, खूने दो आलम मेरी गर्दन पर, बिल्कुल परवाह ना करो इस बात की कि मुझे क्या होता है, क्योंकि मुझे कुछ होगा तो जमात को फायदा पहुंचेगा, नहीं तस्कीन में बैठा रहूंगा तो तुम्हारी बीमारी का क्या बनेगा। ये तो ऐसी बात है जैसे स्पीन दे देकर बाद दर्दों को दबा दिया जाता है और बीमारी अपनी जगह पनपती रहती है। तो ऐसे सुकून की ना आपको ज़रूरत है ना मुझे ज़रूरत है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्लाह मुआशरा की तौफीक बख्शे, क्योंकि इस्लाह मुआशरा के बगैर हकीकत में इस्लाम का गलबा दुनिया पर नहीं हो सकता। बहुत सी वजूहत हैं इसकी, इसकी तस्वीर में मैं सोच नहीं जा सकता, वक्त पहले ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैं ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये मोहब्बत है कि इस्लाम दुनिया में गालिब है, अगर दिली तमन्ना है, अगर आप इस आरजू में जीते हैं कि किसी तरह सारी दुनिया पर दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ जाए, तो याद रखें और इस बात को कभी ना भुलाएं कि इस्लाह मुआशरे के बगैर ये बात नहीं होगी। आपको लाजमन मुआशरे की इस्लाह करनी पड़ेगी, तब आप हकदार बनेंगे कि सारी दुनिया को इस्लाम का पैगाम पहुँचे।